ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി. आज के इस कॉन्फ्रेंस के स्वागत सत्र में आप सभी को स्वागत करते हुए मंचासीन अपने स्पीकर्स को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे. आज के इस प्रोग्राम के एमिनेंट स्पीकर्स आदरणीय ब्रह्म कुमार करुणा भाई जी, आदरणीय अंबिका बहन जी चेयरपर्सन ऑफ स्पार्क विंग, आदरणीय अलका बहन जी जोनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पार्क महाराष्ट्र जोन, आप सभी से नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे. भ्राता ओम प्रकाश सकलेचा जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, आपसे नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें. भ्राता विनायक दलवे जी, फॉर्मर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई. भ्राता विष्णु लांबाजी, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्री मैन ऑफ इंडिया, और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं जयपुर से. बहन डॉक्टर ए वनजा जी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवांस्ड कंपोजिस्ट डिवीजन नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु. शिविका बहन हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ एजुकेशन विंग. संजय भाई हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पार्क विंग. ब्रह्मा कुमारी शशि बहन जोनल कोऑर्डिनेटर ऑफ मध्य प्रदेश स्पार्क विंग. और एकता बहन, आप सभी से नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें. हम सभी आज एकत्रित हुए हैं स्पार्क के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, और अभी का सत्र स्वागत सत्र आप सभी को मंचासीन सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को स्वागत करते हुए, चलिए हम दो मिनट उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को याद करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं.
ओम शांति, ओम शांति, ओम
आज के इस स्वागत सत्र का बहुत सुंदर थीम स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च अ न्यू पैराडाइम। अक्सर बोला जाता है कि साइंस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। एक राइट ब्रेन को मोटिवेट करता है और एक लेफ्ट ब्रेन को मोटिवेट करता है, लेकिन दोनों जब इकट्ठा हो जाए, एक साथ साथ आ जाए, तो बहुत ही कमाल सिद्ध हो सकता है। बहुत मशहूर साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर रीति से कहा था, साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये दोनों कॉन्टेम्पररी है, दोनों साथ साथ जब होंगे तो बहुत कमाल सिद्ध हो सकता है। केवल हम अध्यात्म फॉलो करें लेकिन लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगा तो फिर वो ब्लाइंड फेथ में परिवर्तन हो सकता है। केवल लॉजिकल थिंकिंग है, अब हम ये कहे कि सब कुछ सिद्ध करके बताओ, जो इन आंखों से दिखाई देता है वही सत्य है, जो अदृश्य शक्ति है या जो भी चीज अदृश्य है वो उपस्थित नहीं है, तो वो अगर हम कहें समवेयर वी कांट मूव अहेड, वो एक लेम हो जाते हैं। तो इसीलिए दोनों की आवश्यकता है, लॉजिकल थिंकिंग और इंट्यूटिव थिंकिंग, दोनों को साथ साथ हम अनुभव करें, अपने जीवन में उसको उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते चले। एक बहुत सुंदर थीम को लेकर के आज इस सत्र के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं बहनों से निवेदन करती हूँ, मंच को शोभा बढ़ाने वाले आज के एमिनेंट स्पीकर्स का स्वागत बैजेस और बुकेस के द्वारा करें। हमारे बीच में भ्राता ओम प्रकाश सकलेशा जी अभी अभी पधारे हैं, हम करतल ध्वनि से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं बाबा के इस बेहद घर में, डायमंड हॉल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तीन स्पीकर्स का स्वागत बुकेस और बैजेस के द्वारा हुआ और आप सभी जो सभा में उपस्थित है आप सभी को सूक्ष्म रूप से आप सभी को बाबा के घर से गुलदस्ता हम सब भेंट कर रहे हैं। दिल से स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। इस स्वागत के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ कुमारी मीनल और कुमारी जया जो मुंबई से उपस्थित है, आपसे निवेदन करते हैं बहुत सुंदर नृत्य के द्वारा हम सभी का स्वागत करें। कुमारी मीनल और कुमारी जया। बहुत सुंदर कुमारी मीनल और कुमारी जया, बहुत सुंदर नृत्य से हम सभी का स्वागत किया। अभी मैं अनुरोध करूंगी मधुरवाणी ग्रुप से हम सभी का स्वागत बहुत सुंदर गीत के द्वारा करेंगे सतीश भाई और उनके टीम। मधुरवाणी ग्रुप थोड़े ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे, उनसे पहले मैं अनुरोध करूंगी अलका दीदी से हम सभी का स्वागत शब्दों से करेंगे। अलका दीदी बाल्य अवस्था से ही ईश्वरीय ज्ञान से परिचित है। आप 43 इयर्स से समर्पित रूप से अपने सेवाएं दे रहे हैं। कल्याण तथा सभी उसके संबंधित सेवा केंद्रों का सुचारू रूप से आप संचालन करते आए हैं। आप गंभीरता और शांति की प्रतिमूर्ति हैं। आप कुशल वक्ता हैं और अपनी इस विशेषता से किसी भी आत्मा को परमात्मा का वारिस बच्चा बनाने का हुनर आप में है। आप सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी के उदाहरण हैं। स्पार्क विंग के कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र जोन के, आपने स्पार्क एग्जीबिशन द्वारा कहीं स्कूल्स और कॉलेजेस के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। स्पार्क विंग के अंतर्गत विविध भट्टियों का आयोजन आप समय प्रति समय भिवंडी रिट्रीट सेंटर पर आप कराते रहते हैं। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित विभूतियों को बाबा के बेहद के घर मधुबन में लाकर स्पार्क की गतिविधियों से अवगत कराते आए हैं। योग के विविध प्रयोग के अनुभव आपके पास संचित है जिसमें खास आप रुचि रखते हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी आत्मा अलका दीदी से हम अनुरोध करते हैं आप सभी का स्वागत शब्दों से करें।
ओम शांति। इस संध्या के सुंदर वेला में जिस दिन का मैं इंतजार था वह दिन आज आ गया, क्योंकि बहुत समय से जब भी ये बात आती है कि हम आजादी का महोत्सव मनाएंगे तो उसमें विशेष स्पार्क विंग को हमारे उन सम्मानीय उन विशिष्ट व्यक्तियों की यादें आई और उन्हें विशेष सम्मानित करने के लिए इस मंच पर उनको बुलाया गया। और ऐसे बहुत प्रतिभा वाली आत्माएं, प्रतिभा से संपन्न धनी हमारे भाई बहन है, इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बहुत ही प्यार से और स्नेह से, जिसे परमात्मा कहते हैं कि अपने स्नेह के विमान से यहाँ पहुंच गए हैं, और उन सब के उपस्थिति देख करके हम सबका मन हर्षा रहा है। और ऐसे सुंदर समागम में आज हम सबसे प्रथम अपने प्यारे परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा का आह्वान के साथ स्वागत करते हैं। उस परमात्मा ने हम सभी के अंदर अपनी शक्तियां अपनी ब्लेसिंग देने के लिए इस स्थान पर सभी को आमंत्रित किया है, तो उनके उपस्थिति का अनुभव करते हुए उनका शक्तियों का स्रोत अपने अंदर अनुभव करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। और आज हमारे मंच पर उपस्थित विशेष हमारे आदरणीय सम्मानीय ओम प्रकाश संखिलेचा कैबिनेट मंत्री जो साइंस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं और बहुत ही रुचि रखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को जानने की बहुत जिज्ञासा उनके मन में होती है। बहुत सिंपल सीटी उनके जीवन के अंदर है और इस सादगी को लेकर के वो अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का पद संभाल रहे हैं, तो जरूर आपको भी यहाँ परमात्मा की वो ब्लेसिंग प्राप्त होंगी जिसके द्वारा हम इस भारत के आजादी के पर्व को स्वर्णिम संसार की ओर ले चलेंगे, उसमें भी आपका विशेष सहयोग रहेगा। भाई जी, हम आपका बहुत तहे दिल से इस डायमंड हॉल में स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी जो चेयरपर्सन स्पार्क विंग की हैं, जो इस प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत हैं। दीदी जी, आपके उमंग उत्साह के ये संकल्प आज साकार रूप ले रहे हैं, आपको भी बहुत खुशी हो रही होंगी। जिनको जिनको आपने याद किया वो सब उपस्थित हुए हैं और दीदी जी हम सब के बीच में अपने प्रेरणादायक बोल के द्वारा हम सबको संबोधित करेंगे। दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते स्वागत करते स्वागत करते हैं। हम सबके बीच में मुंबई मायावी नगरी से कौन आए हैं? हमारे विनायक भाई दड़वी, जो बहुत ही इस प्यारे बाबा के घर में आने के लिए उत्साहित होते हैं और इस यज्ञ के हमारे बड़े भाइयों से बहुत ही आदर और सत्कार और प्रेम उनके दिल में है और वही उमंग लेकर के वो पहुंचते हैं और हम देखते हैं उनके जीवन के अंदर बहुत एक्यूरेट पंचुअल अपने कारोबार के अंदर बहुत ही उमंग उत्साह से सभी को साथ लेते हुए कार्य करते हैं। आपकी उपस्थिति हम सभी का उमंग बढ़ा रही है। भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबके बीच में हमारे सम्माननीय वीके करुणा भाई जी जो चीफ मल्टीमीडिया विंग के चेयरपर्सन और साथ में हम सभी के बीच में आज हम देख रहे हैं कि विश्व भर के अंदर इस परमात्मा के दिव्य संदेश को पहुंचाने के लिए जिनके दिल के अंदर सचमुच करुणा है कि ये संसार उस परमात्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सचमुच सुख से शांति से संपन्न करे, उनके दुख और अशांति के जीवन की लहरें समाप्त तो हो जाए, ऐसी बहुत सुंदर करुणा वाले संकल्पों से उन्होंने संसार के अंदर मीडिया के माध्यम से विश्व भर में परमात्मा का संदेश फैलाने का कार्य बहुत ही ऊंचे स्तर पर किया है। भाई जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में माननीय विष्णु भाई लंबा है जो जाने माने जाते हैं कि इन्होंने बचपन से बहुत ही पौधों से झाड़ों से वृक्षों से बहुत प्रेम किया हुआ है और बहुत वृक्ष लगाए हुए हैं, तो ट्री मैन ऑफ इंडिया जिनका परिचय है। भाई जी, आप जरूर इस पर्यावरण के लिए इतनी सभी को अपने कर्तव्यों के द्वारा जागरूकता दिलाते हैं, आपका ये कार्य प्रेरणा स्रोत है। आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर येवनजा प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और जो बहुत ही स्नेह से प्यार से इस निमंत्रण को स्वीकार करके पहुंचे हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में शिविका बेन भी आने वाली है, अब आगे हमारी शिविका बेन बहुत ही हिम्मत रखती है और बहुत ही उमंग भी रखती है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए सकुशल रीति से सबके लिए साथ और सहयोग देते हुए संपन्न करती है। हमारी शिविका बहन का भी बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे स्पार्क विंग के नेशनल मधुबन कोऑर्डिनेटर बी के संजय भाई, आप भी इस विंग को विशेष आगे बढ़ाने के लिए, इस विंग के अंदर विशेष नवीनता लाने के लिए सदैव अपने प्लान बनाते रहते हैं, सबके सामने रखते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन स्व सेवा का भी बहुत विशेष आपका ध्यान रहता है। और हम सब भाई बहने बाबा के बच्चे कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचे, उसके लिए विभिन्न युक्तियों से पुरुषार्थ कराने की विधियां भी बताते रहते हैं। संजय भी आपका भी तहे दिल से बहुत हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारी बी के शशि बहन उपस्थित है सतना से, जो हमें विशेष योग की अनुभूति कराएगी। हमारी जोनल स्पार्कलिंग की कोऑर्डिनेटर है भोपाल से, आप बहुत ही निर्माणचित होकर के और निमित भाव से सेवाओं में सदा उपस्थित रहती हैं, और आप अपनी विशेषताओं से, योग्यताओं से स्पार्कलिंग की भी सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। आपका भी बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। हमारी मीठी बहन एकता बहन जो स्पार्क के गोर ग्रुप मेंबर है, वो भी दिल्ली से पधारी है और दिल्ली में विशेष नई नई इन्वेंशन करने के लिए और उन सभी को आध्यात्मिक जगत से जुड़ाने के लिए सदैव वो तत्पर रहती है। ऐसे हमारी एकता बहन का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मंच पर मन संचालन हमारी मीठी सुमन बहन कर रही, जो ज्ञान सरोवर में हम जाते हैं तो सचमुच नाम हमारी बहन का सुमन है, तो ज्ञान सरोवर में जाते ही सभी को उसकी खुशबू, परमात्म प्यार का अनुभव और सभी को परमात्मा से मिलाने के लिए जो उनके अंदर लगन और तन्मयता है वो दिखाई देती है। बहुत ही लगन और प्यार से ईश्वरीय सेवाओं में जुड़ी हुई है। आपका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ में सभा में बैठे हुए जो भी निमंत्रण पर आए हुए हैं, सभी अतिथिगणों का भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आप सबका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपसे ही इस मंच के जो भी है वक्ता, उनको बोलने के लिए उमंग उत्साह आता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और उनको सुनने के लिए आप विशेष बहुत सुंदर मौका देते हो, इसलिए आप सबका विशेष फिर से हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
अलका दीदी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी हम अनुरोध करते हैं मधुर वाणी ग्रुप से कि आपके सुंदर गीत के द्वारा हम सभी का स्वागत करेंगे। सतीश भाई जी और उनके साथी, सतीश भाई जी बहुत पुराने मधुबन निवासी है और सभी जो भी इस मधुरवाणी ग्रुप में है, यहाँ ही बाबा के घर में, शांतिवन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास ये बहुत सुंदर कला है गीत को लिखना और फिर गाने का। सतीश भाई जी जो भी गीत गाते हैं वो स्वरचित गीत होते हैं, उनके अपने शब्द होते हैं, बाबा की प्रेरणा से वो इतने सुंदर प्रेरणादायी गीत लिखते हैं और हमारे जो यहाँ मेहमान आते हैं उनके सामने वो गीत भी गाते हैं और उनके गीत बहुत सारे गीत रिकॉर्डेड भी है हमारे सीडीज में वो अवेलेबल है। अभी निवेदन करते हैं मधुरवाणी ग्रुप।
ओम शांति। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद। जोरदार ताली बजाकर हमारे मेहमानों का और अपना स्वागत।
महोत्सव बड़ी खुशी से मनाइए, स्वर्णिम भारत की ओर मिलकर अपने कदम बढ़ाइए। स्वर्णिम भारत निर्माण में एक समग्र दृष्टि लाइए, माननीय मंत्री पधारे आइए प्रिय आइए, स्वागतम शुभ स्वागतम। परिवर्तन से ही जग में परिवर्तन आएगा, अपने परिवर्तन से ही जग में परिवर्तन आएगा, निराचार विचार से स्वर्णिम भारत बन जाएगा, स्वर्णिम आचार विचार से स्वर्णिम भारत बन जाएगा, स्वर्णिम भारत बन जाएगा। योग का नित्य प्रयोग कीजिए, योग का नित्य प्रयोग कीजिए, राजयोग अपनाइए, माननीय मंत्री जी पधारे आइए प्रिय आइए, स्वागतम शुभ स्वागतम। ओ
आपकी तालियां चल रही चाहिए अनवरत, आपका अभिनंदन है।
तकनीक में जब आध्यात्मिकता आ जाए, विज्ञान और तकनीक में जब आध्यात्मिकता आ जाए, हम विकास की ओर चलेंगे जब विनाश से बच जाए, हम विकास की ओर चलेंगे जग विनाश से बच जाए, जग विनाश से बच जाए। आइए अनुसंधान में, हो आइए अनुसंधान में, आध्यात्मिकता को लाइए, माननीय मंत्री पधारे आइए प्रिय आइए, स्वागतम शुभ स्वागतम। ओ
आ
शक्तियों से स्वर्णिम भारत बना रहे, स्वर्णिम भारत बना रहे। प्रभु योजना में शामिल हो, प्रभु योजना में शामिल हो, अपने भाग्य जगाइए। माननीय मंत्री जी पधारे, आइए प्रिय आइए। आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी खुशी से मनाइए। स्वर्णिम भारत की ओर मिलकर अपने कदम बढ़ाइए। स्वर्णिम भारत निर्माण में एक समग्र दृष्टि लाइए। माननीय मंत्री जी पधारे, आइए प्रिय आइए। स्वागतम शुभ स्वागतम हो।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का, बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर संदेश गीत के द्वारा दिया हम सबको। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जरूर लाएंगे। और साइंस में स्पिरिचुअलिटी को जब हम संलग्न करते हैं तो स्वर्णिम दुनिया इस संसार में जरूर हम ला सकते हैं। बहुत सुंदर संदेश हम सभी को आपने इस सुंदर गीत के द्वारा दिया, तहे दिल से धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट है, जो साइड में बैठे हुए हैं भाई बहने वो थोड़ा बीच में आ जाए तो बहुत सुविधा रहेगी। बाद में जो भाई बहने आएंगे तो उनके लिए फिर वहाँ जगह बना रहेगा। और जिनको बुकलेट इस कॉन्फ्रेंस के बुकलेट नहीं मिला हुआ है, क्योंकि थोड़ा देरी से छपा था, देरी से मिला था, तो इसीलिए कुछ डेलीगेट्स को बुकलेट नहीं मिला है। जिनको भी नहीं मिला है, ये गेट्स दोनों साइड गेट्स पर अपने भाई बहने बुकलेट्स दे रहे हैं। अगर जिनको भी नहीं मिला है वो वहां से जरूर प्राप्त करेंगे। और शेड्यूल अनुसार जो भी कार्यक्रम है उसको आप फॉलो करेंगे। अभी हम निवेदन करने जा रहे हैं अपने आदरणीय अंबिका दीदी से, जो इस स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं और स्पार्क विंग के सूत्रधार हैं। आप पिछले 45 इयर्स से अपने जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके बहुत यंग एज में ही इस संस्था के संपर्क में आए और तब से लेकर के बैंगलोर में अपने हृदय पुष्प दादी जी के साथ साथ सेवा में लगे। और अभी वर्तमान समय बैंगलोर जो विवीपुरम सब जोन के करीब 300 हमारे सेंटर्स है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, वो उन सभी सेंटरों को बहुत सुचारू रूप से आप संचालन करते हैं। और साथ साथ स्पार्क विंग की गतिविधियों को भी अब बहुत सुंदर आप उसको संचालन करते हैं। आप त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्ति है। जो भी आपके संपर्क में आते हैं आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। आप बहुत गहन तपस्वी हैं। मेडिटेशन में अलग अलग रीति से आपने प्रयोग किया हुआ है, अनुभूति किया हुआ है, और हजारों आत्माओं को उस अनुभव से लाभान्वित करते रहते हैं। ऐसे महान विभूति आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी से निवेदन करते हैं आज के इस सेशन में आपके दिल का उद्गार ग्रीटिंग्स हम सभी को दे आदरणीय अंबिका दीदी जी।
ओम शांति। हमारे परम आदरणीय करुणा जी और
सभी हमारे परम आदरणीय अतिथिगण और मेरे सभी भाई बहनों को हमारी नमन है। आज की हमारी ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च, उतना ही नहीं हम ये रिसर्च भी स्वर्णिम दुनिया को लाने के लिए हम सब मिल करके क्या करें, उसी उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अगर कुछ सेकेंड्स आप इस दुनिया को अपने सामने लाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा? वर्तमान की ये जो समय है, चारों ओर हम देखेंगे कितने सारे हलचल है। दुनिया में कई स्थान पर आग लगी हुई है, कहीं प्रकृति का हलचल है, उसका असर में सारी मानवता के अंदर इतने आतंक, भय, चिंता, अनसर्टिनिटी, कल क्या होगा ये भी मालूम नहीं। लेकिन इसके बीच अगर हम देखें, हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो भी इस दुनिया को अपनी कंट्रीब्यूशंस दिया है, इन ऑल द वे मटेरियल कंफर्ट से लेकर हेल्थ साइंटिस्ट या और दूसरे दूसरे जो वर्ग है, हर एक की कंट्रीब्यूशन देश को या दुनिया को आगे ले जाने के लिए, सारी मानवता को सुख शांति और एक निश्चिंतता देने के उद्देश्य से ही सारा जो भी संशोधन है वो किया गया है। लेकिन परिणाम स्वरूप हम देखें कि जो हम चाहते थे वो हुआ है। आपको स्वयं आएगा कि जितना हम चाहते हैं उतना अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी सोच, जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली सर्व रूप से सारी मानवता को संपन्न बनाने के उद्देश्य से हम सब कुछ कर रहे हैं, बट द फिफ्थ डायमेंशन जो सारी चारों ही डायमेंशन की उन्नति का, विकास का, सफलता का आधार है, दैट इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसके आधार से सारी बातें सहज आ जाती है और हम सफलता की ओर। सफलता जीवन में ये है, या किसी भी वर्ग के कोई भी आत्मा, हमारी देश और दुनिया को हम एक सदृढ़ दैवी समाज जिसमें सारी दैवी गुणों से संपन्न, सुख शांति संपन्न दुनिया के निर्माण करने की, ऐसे समाज को लाने के लिए सारी सत्ताएं अपना सारी योगदान दिया है, चाहे राज्य सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, विज्ञान सत्ता। तो दिन रात आप सभी ने अपनी अपनी दिल के कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया हुआ है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, द अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की बात हम करते हैं या सुनते हैं, आप ये सोचते हैं हमें टाइम कहाँ है, हम बहुत बिजी है। लेकिन इसके आधार से ही आपकी पर्सनल जीवन हो या ऑर्गेनाइजेशनल आपका कार्य क्षेत्र हो, कहाँ भी हो, उस सारी सफलता की आधार ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए आप डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस टू रियलिटी। हम सभी स्पिरिचुअलिटी को अगर और सरल तरीके से आपके आगे रखो, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की बात नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स विद अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं है फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. वी आर द स्पिरिट विद इन, द एनर्जी विद इन, द लाइट बीइंग विद इन, विच इज द सोर्स ऑफ द लाइफ. अगर ये एक सच्चाई को हम जानेंगे, हमारे अंदर जो ट्रेमेंडस एनर्जी है, द पॉजिटिव एनर्जी, द प्योर एनर्जी है, उसको जीवन में हर कार्यक्षेत्र में चैनलाइज करना सहज हो जाते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने ये लक्ष्य रखते हुए स्पिरिचुअलिटी को भारत में हम सभी सुनते हैं, बहुत तरीके से सुनते हैं और हम कहते हैं हम रोज अभ्यास करते हैं, लेकिन अभ्यास तक ही, कुछ मिनट तक ही उसका सीमित होना ये जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी को हर सेकंड, हर हमारे कार्य में जब हम लाएंगे, एप्लीकेशन में लाएंगे, कर्मों में लाएंगे, हमारे विचार और बोल में लाएंगे, तो दैट एप्लीकेशन गिव्स मी द रिजल्ट, जिसमें जो हमारी एनर्जी, द पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्मों में जब आएगा, तो तभी हम स्वयं के कार्यक्षेत्र में भी सफल होना ही नहीं है, लेकिन हमारे कुटुंब में, हमारे संबंधों में वो जो वैल्यूज है जो हम चाहते हैं, एक प्यार भरा संसार, एक सुख शांति संपन्न व्यवहार, एक हार्मोनी जीवन में होवे, जो हम चाहते हैं, जरूर हम ये सारी बातें अनुभव करते आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को खुद बढ़ सकते हैं. इसलिए हम आप सबको निमंत्रण देते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस, दिल्ली डीआरडीओ, बैंगलोर निमैंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और दिल्ली का स्पाइन सेंटर और गुजरात यूनिवर्सिटी, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज है जो ये रिसर्च के विथ कोलैबोरेशन विथ स्पार्क विंग ये कार्य भिन्न भिन्न रूप से आगे बढ़ा रहे हैं. तो आप सबको भी हम निमंत्रण देते हैं, हम सब मिल करके देश और दुनिया को एक दैवी समाज, एक हार्मोनियस सोसाइटी हम बनाए, जहां हम सब एक प्यार प्रेम हार्मोनी से जिए. ओम शांति.
बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका दीदी, आपने बहुत सार रूप से बहुत कुछ कह गए. आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता को जीवन में हम कैसे लाएं? किसने बहुत सुंदर कहा है कि वेयर द साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी बिगिंस. स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ द सोल. वाकई जिसको साइंस के पास जो क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के पास उन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स है. साइंस जो मेजरेबल है उसी को वो मानता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज इमेजरेबल. हम कहीं एक्सपीरियंसेस लाइफ के हम मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अनुभव जरूर करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि उन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते. हम दुख को मेजर नहीं कर सकते, सुख को मेजर नहीं कर सकते हैं, जो हम फील कर रहे हैं उसको मेजर नहीं कर सकते, टेस्ट को मेजर नहीं कर सकते. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन दे ऑल एग्जिस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी. टू अंडरस्टैंड दीज इमोशंस, these feelings, and to channelize them to motivate the self and to bring about the positive change in the self is spirituality. Abhi hum is karyakram ko aage badhate hue मैं अनुरोध करने जा रही हूँ परमादरणीय राजयोगी करुणा भाई जी, जो पिछले 53 इयर्स से यहाँ माउंट आबू में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन बचपन से ही जब आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे बैंगलोर में, तब ही आप इस संस्था के संपर्क में आए। तब बैंगलोर में हमारे हृदय पुष्पा दादी जी थे, उनके संपर्क में आए, फिर यहाँ माउंट आबू में आकर के पिताश्री जी के पालना में पले, माताश्री जी के जगदम्बा सरस्वती मम्मा जिनको हम कहते हैं, उनके प्यार की पालना में आप पले और आगे बढ़े। 1969 में संपूर्ण रीति से अपना जीवन समर्पित रूप से इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने समर्पित किया। तब से लेकर के बहुत कुछ योगदान इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, मानव कल्याण को दृष्टि में रखते हुए बहुत कुछ सेवाएं आपने की। वर्तमान समय आप मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमिटी हैं, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस और सेक्रेटरी ऑफ राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, रेडियो मधुबन कम्युनिटी सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं, मल्टीमीडिया के चीफ हैं, मीडिया स्पोक्स पर्सन है, और अवेकनिंग चैनल और पीस म्यूजिक टीवी, जो आप सभी अपने घर में बैठे बैठे आप इन चैनलों का आनंद अब लेते हैं, आप उसके चैनल हेड भी है। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आप इस संस्था में देख रहे हैं, आप उसके नींव हम कह सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही जो भी छोटी छोटी जो टेक्नोलॉजी, तब से लेकर के आपने बहुत टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीशंस, करेजियस डिसीशंस आपने ली है इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे कर्मठ कर्मयोगी राजयोगी करुणा भाई जी से मैं निवेदन करती हूँ। कर्मठ मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि करुणा भाई जी के मन और दिल में रोज उठते बैठते सोते चलते हमेशा सेवा ही हमेशा उनके मन में होता है। सुबह सुबह 4 बजे भी भाई सब को देखते हैं तो सेवा में लगे हुए हैं। तो इतने 83 इयर्स के आयु में ही इतनी सेवा आप कर रहे हैं, इनको देख करके बहुत हम सभी को प्रेरणा मिलती है। ऐसे कर्मठ राजयोगी भ्राता करुणा जी से मैं निवेदन करने जा रही हूँ, आपकी प्रेरणाएं आज के इस कार्यक्रम के प्रति हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे आदरणीय करुणा भाई जी।
ओम शांति। मंच पर बैठे हुए मेरे साथी सभी भाइयों और बहनों, सभा में बैठे हुए सभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अति प्रिय संतानों, आज का टॉपिक या ये कार्यक्रम रिसर्च ग्रुप, जिसको हम स्पार्क कहते हैं, तो आप जानते हैं कि जो स्पार्क है तो स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि भाई ईश्वर के जो स्पार्क है, तो वो हम विश्व को देने के लिए ये कार्यक्रम रखे हैं। मेरा लाइफ में जो आज का टॉपिक जो रिसर्च है, वो मैंने 1960 में जब HMT में एज ए डिजाइन इंजीनियर वहां सेवा करता था, तो हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलोर में आए थे तो उनसे जब मैं मिला जो पहला स्पार्क मुझे अनुभव हुआ कि भाई ये जो दुनिया में जो हम संतों को गुरुओं को देखते हैं उनसे ये भिन्न है ऐसा अनुभूति हुई। बोर्ड में भी लिखा हुआ था ईश्वरीय विश्वविद्यालय विद्यालय है ये आध्यात्मिक को इस सृष्टि में पहली बार सरल रूप से सरल भाषा में सिखाने वाली एक संस्था है ये वो अनुभव मैंने किया पहला रिसर्च है वो। जब मैं ज्वाइन हुआ उस पढ़ाई के लिए तो मेरे से उन्होंने पूछा तो आप कौन है आपका क्या परिचय है तो मैंने बताया मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूं एचएमटी में डिजाइन इंजीनियर हूं और मेरा नाम बताया तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा आप ये नहीं हो। जो शौक उस समय पर जो हुआ जो दादी जी का प्रकाश और वो जो कह रहे हैं वो सत्य है इतना अनुभव तो हो रहा है पर जो मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि ये आप नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन किया तो मैंने जो मैं जानता हूं मेरे बारे में वो मैंने आपको बताया मैं अपने माँ बाप सब परिचय दे सकता हूं और मैं यही हूं। तो उन्होंने दोबारा मुझे कहा कि आप वो नहीं हो। तो फिर मैंने पूछा तो फिर मैं कौन हूं रिसर्च है ना मैं कौन हूं ये है पहला रिसर्च। उन्होंने बताया किस तरह से शरीर लेता है और शरीर छोड़ता है तो ये आप हो जिसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का परिचय दिया तो मैंने कहा आत्मा कहाँ है तो उन्होंने बताया कि ये स्थान है जहां आत्मा रहती है इसीलिए तिलक और जब मस्तक हम ईश्वर के चरणों में करते हैं हर मंदिर में झुकते हैं तो आत्मा का स्थान बताया। तो जैसे हमारे सुमन दीदी ने बताया कि भाई आत्मा अनुभूति का है जो दिखता है जो आपने जो इंजीनियरिंग में साइंस में जो पढ़े हैं वही सब कुछ नहीं है इस दुनिया में आध्यात्मिक भी एक शिक्षा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं यहां रहता हूं तो अनुभूति कैसे करूं मैं क्योंकि मैं तो अभी तक यही समझता था। तो उन्होंने कहा जैसे बच्चे को आप नाम देते हैं माँ बाप का परिचय कराते हैं तो वो बच्चा जब रिपीट करता है उसको कई बार उसको पक्का हो जाता है तो नाम सुनते ही एकदम हम लोग जाग जाते हैं। तो इसी तरह से कोई और साधना नहीं है इसके लिए तो आपको अपने आप को आज जो परिचय मिला है मैं ये शरीर नहीं हूं मैं चेतन आत्मा हूं ज्योति स्वरूप हूं तो आप इसको आज सारा दिन रिपीट कीजिए अपने आप में रिपीट कीजिए मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं ज्योति स्वरूप हूं। फिर नेक्स्ट लेसन आपको कल मिलेगा। तो मैंने कहा मैं अभी इसका प्रैक्टिस नहीं करूं तो उनको मालूम हो जाए तो फिर मुझे दूसरा लेसन नहीं देंगे इसीलिए मैं वहां से ही शुरू किया रिपीट करने का। और रात को सोते वक्त भी जैसे मुझे वही आता रहा और ऐसे अनुभूति होती रही कि भाई मैं एक चेतन शक्ति हूं मैं एक आत्मा हूं ज्योति स्वरूप हूं। तो सुबह 5:30 बजे मैंने फिर से आश्रम में गया तो इतनी खुशी थी मुझे कि भाई मुझे एक प्रैक्टिकल रिसर्च का जैसे अनुभूति हुई, क्योंकि साइंस स्टूडेंट था, तो इसलिए जब तक अनुभव नहीं होता है तो हम नहीं मानते थे, अंधश्रद्धा नहीं। तो मैं दादी जी को बोलने ही वाला था, मैंने रिपीट किया ये, तो कहती है नहीं नहीं मुझे दिखता है, आपके फेस से ही मालूम हो रहा है कि आप इसको रात भर याद किया है। तो इस तरह से पहला रिसर्च मेरा ये रहा। तो सेकंड लेसन थोड़ा इससे थोड़ा और डिफिकल्ट था। तो ईश्वर में मान्यता तो थी, परंतु आप जानते हैं साउथ में तिरुपति जैसा मंदिर और हर जगह में मंदिर है, परंतु अनेक प्रकार के देवियों का अलग है, परमात्मा शिव का अलग है, तो वो रिसर्च हमने नहीं किया था। ओनली श्रद्धा, हाँ ईश्वर है, मंदिर देखते ही मान्यता है। परंतु दादी जी ने मुझे दूसरा लेसन में बताया, भाई जैसे आप आत्मा है, तो मैंने कहा है मैं आत्मा हूं, पक्का कर लिया। तो वैसे शरीर का पिता है, वैसे आत्मा का भी पिता ईश्वर है, ज्योति स्वरूप है वो भी। तो मैंने कहा वो कहां है, आपने आत्मा तो यहां बताया पर अभी ईश्वर कहां है। तो पिता है मेरा, ठीक है, परम पिता परमात्मा बोलते आए हैं, तुम्हें वह माताश्च पिता। तो उन्होंने यही बताया, जहां तक आप देखते हो ये दुनिया, उससे पार जिसको परम धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, तो आत्मा और परमात्मा रहने का वो स्थान है, तो आप उनको वहां याद करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं जब करूं, तो उसकी विधि इन्होंने बताया किस प्रकार से परमात्मा को, जैसे जो भी आपको जानते हैं प्रिय है तो उनको आप याद करते हैं उनके गुण से, उनकी व्यक्तित्व से। तो इसी प्रकार ईश्वर की याद हमको ईश्वर के गुण से करना है, और मैं उनका बच्चा हूं, जैसे राजकुमार राजा का बच्चा हूं मैं, इनको वो नशा रहता है, इसी प्रकार हमको ईश्वर के गुण को याद करते हुए मैं किसका बच्चा हूं। तो ये भी आपको पूरे दिन आप याद करेंगे, आपको अनुभव होगी, तो फिर आ जाना कल तीसरा लेसन आपको देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे तो ईश्वर के तो वो हनुमान चालीसा भी चल रहा है आजकल, तो ईश्वर की महिमा तो बहुत है, तो करता रहूं वो तो सहज है। सुबह पहला लेसन तो एक ही, मैं आत्मा हूं ज्योति स्वरूप हूं, उतना ही किया था, पर ये तो अच्छा है, तो मैं सचमुच ईश्वर की महिमा करता रहा, रिसर्च था। तो एक प्रकार की खुशी तो मुझे हुई, पर दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है। तो वो अनुभूति, जैसे आप सभी यहां आए हैं, वैसे मैं भी 1960 में पहली बार आबू में आया, पिशाद्री जी के सामने मैं बैठ करके, जिसको हम विधि कहते हैं प्राचीन सहज राजयोग, जो यहां सिखाते हैं आप सबको, एक मिनट बैठिए शांति में ऐसा बोलते हैं, समाप्ति के समय पर भी आपको कहते हैं, तो वो साधना जिसको हम कहते हैं प्राचीन, बहुत पुराना, आजकल जो राजयोग सिखाते हैं योग माना शारीरिक सिखाते हैं, परंतु ये आपको बता देंगे, तीन दिन में आप सभी सीख जाएंगे किस तरह से बच्चे माँ बाप को याद करते हैं सहज रूप से, इसी तरह से ईश्वर को, एक ही ईश्वर है विश्व में, दो नहीं है, तो सबके लिए एक ही है, चाहे कोई भी धर्म हो तो ईश्वर एक है। तो ये आपको यहां अनुभव होगा, ये मैं विश्वास करता हूं, ये भी रिसर्च पर करना आपको है और आप इसकी अनुभूति करेंगे। और तीसरा ये विश्व प्रकृति जो पांच तत्व का जो है इसमें हम सब है तो सब जानते हैं ये प्रकृति को, परंतु एक चीज भूल गए कि हम सभी आत्माएं हैं, एक ईश्वर के बच्चे हैं। तो ये संसार में भले आप किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म में हो, पर एक परिवार है। इस विश्व के अंदर हम सभी एक ईश्वर के बच्चे एक परिवार के हैं, वसुदेव कुटुंबकम। मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बात पर हम लोग फिर आगे बढ़ते रहे। तो आज मुझे बताया गया कि ये एक सत्य सारे विश्व में जब मालूम हो जाए तो इस विश्व में फिर से शांति स्थापन होगी। तो इसका ये कार्य को कहते हैं सद्धर्म की स्थापना, जो आज हम सब आशा कर रहे हैं। भारत में जो आध्यात्मिक है ये जब सारे विश्व में पहुंच जाएगा तो तब फिर से विश्व में नया युग की प्रारंभ होगी। तो वो रिसर्च हमारे भाई बहने कर रहे हैं। अभी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा तो दो मिनट ईश्वर की याद में बैठे। लास्ट एक बात मेरी लाइफ का अनुभव आपको सुना करके समाप्त करूंगा। मैं जब माउंट आबू में आया था, पिताश्री जी से मिला तो मैंने उनसे पूछा, आप तो डायमंड मर्चेंट है, बिलियनियर उस समय के, तो आप कैसे इस नॉलेज में आए और आपको क्या प्रेरणा मिली? तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में एक गार्डन में बैठे थे तो उनको एक साक्षात्कार हुआ अचानक। तो जब ही साक्षात्कार में उन्होंने ये देखा कि जिनको हम अपना समझते हैं वो सभी एक ऐसी प्रकृति की प्रकोप चल रहा था, सुनामी या भूकंप या जैसे आप देख रहे हैं तूफान आदि, तो जिनको हम अपना समझते थे वो सब जा रहे हैं उसमें। एक भयानक दृश्य था जिसको हम कहते हैं सृष्टि का परिवर्तन या विनाश का एक दृश्य उन्होंने देखा। परंतु उसके बाद तुरंत उन्होंने एक और दृश्य देखा तो सितारे आकाश से नीचे धरती पे आ रहा है और सभी देवता जैसे श्री कृष्ण श्री राम या जिनको भी हम देवताएं मानते हैं तो उस रूप में देवताओं के रूप में बच्चों के रूप में वो सितारा आ करके जन्म लेते थे और वो समय बच्चे आएगा तो और आप सबको प्राचीन सहज राजयोग का अभ्यास करना है। उन्होंने मुझे एक आवाज आई जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, जहां किसी से भी आप पूछेंगे यही कहेंगे शिव बाबा हमको सिखा रहे हैं, स्वयं परमात्मा हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि आप रियली रिसर्च करके अनुभव करके यहां से जाएंगे। परंतु ये समय 1936 में उन्होंने को हुआ था और वही सेन आज साक्षात्कार में नहीं चेतन रूप में हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से प्रकृति अपना कार्य कर रहा है और अधर्मों का विनाश सद्धर्म की स्थापना का भी कार्य चल रहा है और इस सृष्टि का परिवर्तन का एटॉमिक वॉर का भी आवाज सुन रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हम सभी जो पिताश्री जी ने उस समय कर कहा था तो वो हम सभी अभी देख रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मोर देन 140 कंट्रीज में 21 लाख परिवार आज ये प्राचीन सहज राजयोग को अभ्यास कर रहे हैं और जो सद्धर्म जो स्थापना कर रहे हैं जिसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। मुझे अत्यंत हर्ष है मैं आप सबको यहां तक आए हैं तो मुझे खुशी है। तो हम सभी उस आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं जो ईश्वर हमारे लिए फिर से इस भारत में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं और उसमें जो आने वाले आत्माएं मेरे सामने है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद करुणा भाई जी, आपने बहुत सुंदर अपना अनुभव जीवन का अनुभव हमारे समक्ष खोल के रख दिया और जाते जाते बहुत सुंदर बात कही। सतयुगी दुनिया आने वाला है, फिर प्रश्न उठता है कि यह क्या संभव है। जितना अटल निश्चित है रात के बाद सवेरा आना ही है, सवेरे के बाद फिर रात, ये नेचुरल साइकिल है। ऐसे भी ऐसे सीजनल साइकिल्स है, लाइफ साइकिल है, तो जो भी चीज है तो वो साइक्लिक मूवमेंट में चलता है। तो ऐसा ही बड़ा साइकिल है कालचक्र, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। हम सभी को पता है कलयुग अभी चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये प्रश्न उठता है। हम सभी के लिए ये एक खुशखबरी है, ये कलयुगी दुनिया के अंधेरी रात बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। स्वर्णिम दुनिया के स्वर्णिम सवेरा बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें
स्व परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि उस स्वर्णिम दुनिया में वही जा सकते हैं जो सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हमारे अंदर अभी परमात्मा की याद से, परमात्मा की शक्ति के आधार से हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, सर्व गुणों से हम अपने जीवन में जीवन को भरे, तब जाकर के हम उस दैवी दुनिया में जाने के लिए लायक बन सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, उस परमात्मा की याद से सब कुछ संभव है। तो इसके बारे में हर रोज सुबह राजयोग शिविर आप सभी के लिए रखा हुआ है 7 बजे, सभी आप उसको जरूर अटेंड करेंगे तो इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में और गहराई से आप उसको समझेंगे, परमात्मा के साथ कैसे हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं उसके बारे में आप और समझ पाएंगे। तो जरूर सुबह के राजयोग शिविर के सेशंस आप जरूर अटेंड करेंगे। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ भ्राता ओम प्रकाश सकलेजा जी, जो भोपाल से यहाँ पधारे हैं, आज के इस सेशन के आप चीफ गेस्ट हैं। भ्राता ओम प्रकाश सकलेजा जी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एन MLA फ्रॉम जावद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट नीमच इन मध्य प्रदेश। In June 2020, appointed as Cabinet Minister in Shivraj Singh Chauhan government, which was formed in Madhya Pradesh. Currently is the Minister for MSME sector and Minister of Science and Technology under Shivraj Singh Chauhan government in Bhopal. Parmadarniya Bhrata ओम प्रकाश सकलेजा जी से निवेदन करते हैं, आपका दिल का उद्गार हम सभी के समक्ष रखेंगे।
नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में धर्म पे, धार्मिक विषय पे रिसर्च की इस गोष्ठी में मंच पर विराजित अभी जिनको हमने सुना, सुश्री अंबिका जी, हमारे BK करुणा जी, हमारे श्री विनायक जी, विष्णु जी, हमारे मिस्टर आबू एवं BK संजय जी, अन्य अतिथिगण, सबके नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, आज पहली बार मैं आया हूं इस सदन में विराजित। देश में एक नया परिवर्तन लाने की कल्पना रखकर अपना समय और अपना कल्याण के लिए दोनों के समन्वय के साथ यहां पधारे हुए सभी अतिथिगण, वास्तव में आज का विषय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी इस देश में विभिन्न स्थितियों के कारण अशांति है और धर्म और विज्ञान के बीच की एक दौड़, जो मैं कई बार बोलता हूं कि धर्म से विज्ञान नहीं भरपूर होगा तो विज्ञान केवल भौतिक सुख तक ही सीमित रह जाएगा, अगर वो धर्म के साथ होगा तो भौतिक के साथ जन कल्याण और मन की शांति के लिए भी होगा। आज अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी दौड़ हो गई है जब हम आध्यात्मिक से आर्थिक युग के दौर में आए तो एक अंधी दौड़ में हम अपने सब कुछ भूलकर उस दौड़ का हिस्सा बन गए हैं, जिसका न हमें अंदाजा है कि वो उस अंधी सुरंग में दौड़ लगाकर हम कहां पहुंचेंगे, लेकिन दौड़ जरूर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते हम अपने रिश्ते आधे भूल गए, दौड़ते दौड़ते हम अपने कर्तव्यों से हट रहे हैं या छूट रहे हैं। इसमें मेरा यह अर्थ नहीं है कि सबके छूट रहे हैं, बहुतायत में ये छूट रहा है, इसलिए कृपया कोई अपने ऊपर ना ले। इसलिए मैं अपने शब्दों को सुधार कर रहा हूं कि इस अंधी दौड़ में दौड़ने वाले लोगों का ये जो जीवन है ये वास्तव में बहुत द्वंद से भरपूर है। मानसिक रूप से एकाग्रता, मैं अभी समझ रहा था, अलका जी से पूछ रहा था कि वास्तव में कंसंट्रेशन करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में, हमारी इस जीवन के काल में जो शरीर हमें माध्यम के लिए रूप में भगवान ने दिया है, आत्मा के माध्यम से हमारे शरीर, आत्मा तो अमर है लेकिन शरीर हमारा एक माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति का या अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का, उसके माध्यम से कैसे हम जन कल्याण के उसमें सोच सके अपनी शांति। क्योंकि अभी अगर मैं आज के समय बात करूं, क्योंकि मेरा जीवन का सबसे बड़ा शोक रहा दुनिया घूमते रहना, और पिछले 45 वर्षों से मैं कई देशों में कई धार्मिक विषयों पे, कई इंडस्ट्रीज पे, कई लोगों के भाव को समझने का प्रयास करते करते इस बात पे आके सोचने पे मजबूर हो रहा हूं कि हम शेयर करने वाले विषय से हटकर एक्वायर करने वाले विषय पे आते जा रहे हैं। जब हमारे संयुक्त परिवार थे, जब हमारे हम लोग अब भाई बहन मित्र रिश्तेदारों से कई चीजें शेयर करते थे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, धीरे धीरे समय ने कुछ ऐसी परिस्थिति लगा दी कि आज का बच्चा सिर्फ एक्वायर करना जानता है, शेयर करना भूलता जा रहा है। और मैं जब इस बात को देख रहा था तो मैंने देखा कई देशों के लोग भारत के संयुक्त परिवार को अध्ययन करने के लिए भारत में थे पिछले 10 साल पहले तक, और आज जिस स्थिति में हम जाते जा रहे हैं इस वैज्ञानिक युग के नाम पे अंधी दौड़ के माध्यम से अपना पीस ऑफ माइंड खोके कंफ्यूज दिमाग से दौड़ रहे हैं। और जब मैं थोड़ी और गहराई में बात करूं तो 5 से 10 साल पहले मैं जब यूरोप और अमेरिका में बातें करता था तो कई लोगों के कार्ड पे ये मेरे मानसिक चिकित्सक हैं कार्ड में लिखा होता था, कई कार्डों में। क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों हम उस अंधी दौड़ को वेस्टर्न या अमेरिकन कल्चर को अपनाते हुए अपना मूल खोते जा रहे हैं। वास्तव में ये चिंता का विषय है, ये बहुत गहरे अध्ययन का विषय है कि कैसे हम जीवन जीने की कला को भूलकर एक ऐसी पद्धति पे की तरफ दौड़ रहे हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिमाग से मानसिक अशांति की तरफ ले जा रहा है, अतृप्त आत्मा की तरफ हम दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसे संकल्प को लेके इस गोष्ठी के आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार मानता हूं और इस बात का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे उपस्थित होने का आपने अवसर दिया, क्योंकि इस अवसर के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को और गहराई से सोचने में लगा रहा हूं। मेरे दिमाग में एक विषय जरूर था कि अप्रोक्सीमेटली 2 वर्षों में मैंने जितना साइंस टेक्नोलॉजी को अध्ययन किया और साथ में जितने भी यंग एंटरप्रेनर, क्योंकि एमएसएमई डिपार्टमेंट भी मेरे पास होने के कारण उन दोनों के बीच की चर्चाओं का एक समन्वय सोचने की जब बात करी तो सबसे बड़ा चैलेंज ध्यान में आता है कि विज्ञान का अध्यात्म से कितना जुड़ाव है, और वास्तव में हमारा अगर हम हमारे धर्म का पुराना इतिहास देखें तो मैं तो कई बार ये कहता हूं कि विज्ञान का जन्म ही धर्म से हुआ है, क्योंकि अगर धर्म पहले आया और हर धार्मिक विचार के पीछे एक साइंस था जिसका अध्ययन अभी भी 10-15% ही हुआ है। क्योंकि अगर मैं हमारे पुराने काल के शास्त्रों को पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, चाहे गीता पढ़ो, चाहे महाभारत देखो, चाहे अन्य कोई भी काल की किताबें देखें, अध्ययन करें उन शास्त्रों का, तो एक ही बात ध्यान में आती है कि जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है उससे तो कई आगे की बातें उस समय होती थी। क्या आज हम टेलीपैथी से कहीं जाके देख सकते हैं जो उस जमाने में थी? क्या हम उस गणेश जी से बड़ी कोई सर्जरी के बारे में आज सोच सकते हैं जो उस समय थी? तो कहीं ना कहीं अभी उस स्वरूप को और गहराई से अध्ययन करते हुए विज्ञान को धर्म की मूल भावना से जोड़ के कैसे हमारा जीवन, क्योंकि ये बात जरूर सत्य है कि आत्मा अमर है, लेकिन आज का आत्मा के निवास को भी सुंदर रखना हमारा धर्म है। इस आत्मा के शरीर को अगर हमने स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रखा तो कहीं ना कहीं हमारे भाव और विचार में भी परिवर्तन आएगा। इसीलिए हर समय जब कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि उसमें रहने वाली आत्मा भी प्रसन्न रहे और हम वास्तव में उस आत्मा का बोध करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वास्तव में इस विषय पे मैं एक बहुत जल्दी मेरे मन में इच्छा है कि अगले साल तक एक गोष्ठी मध्य प्रदेश में करूं जिसमें कई देशों के वैज्ञानिकों को भी बुलाऊं और धर्म के वरिष्ठों को जो धर्म के बारे में चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का सबसे उत्तम और सबसे सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है वो सामान्य जनमानस तक गोष्ठी के माध्यम से पहुंचाए जिसमें सबका कल्याण हो, इसी भावना और पुनः सबका बहुत बहुत अभिनंदन जिनने मुझे बुलाया और जिनने मुझे इतनी देर झेला, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता ओम प्रकाश जी, आपने बहुत सुंदर रीति से कहा कि कैसे धर्म
और विज्ञान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ आध्यात्मिकता की बात करते हैं। धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। हर धर्म के फाउंडेशन में अध्यात्म है। यहाँ इस संस्था में हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। हर व्यक्ति को हम भाई या बहन के रूप से हम संबोधित करते हैं, क्योंकि विश्व एक कुटुंब है। तो जो कोई भी हम बैरियर्स नहीं क्रिएट करते। आध्यात्मिकता माना अपने आद्य को बाहर निकालना, अपने स्पिरिट को समझना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड वन्स ओन स्पिरिट, अंडरस्टैंड वन्स ओन सेल्फ। सो आध्यात्मिकता को समझते हुए, आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करते हुए हम विज्ञान को बहुत आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं शांति की ओर, विनाश के ओर नहीं, लेकिन एक प्रगति के ओर, सुख के ओर, सत्य के ओर हम ले जा सकते हैं। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ भ्राता विनायक दलवी जी, जो मुंबई से यहाँ पधारे हैं। ही इज द फॉर्मर एडवाइजर टू द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टर विनायक दलवी जी, हुज वर्च्यूज एंड अकम्प्लिशमेंट्स वुड रन इनटू पेजेस, इज ट्रूली वन ऑफ द काइंड, अ मैन ऑफ मेनी dimensions. He has been an academic achiever and holds 3 postgraduate degrees. Much sought out after by the industry, he declined all the lucrative offers to pursue his first love, teaching. He eventually joined Mitterbay College and rose to the head of the Department of Zoology. His contribution to the development and progress of academics is immense. As chairperson of the Board of Studies in Zoology, he has exhibited visionary leadership qualities and made a mark by using innovative methods in preparing syllabi that include formation of pyramid committee, which prepared a framework of the syllabi for 5 years. His fondness for NCC has received training for 5 years inspired him to frame the much recognized interdisciplinary inter-faculty NCC syllabus and was applauded by ADG Maharashtra Directorate Major General Subhashish Sen Gupta, as well as facilitated by late Lieutenant Commander Dr. Praveen Dosteli Foundation for the same. So his biography runs into pages actually. To be very short and to be very precise, he is a man of many dimensions. He has contributed not only in the field of education, but also in the field of NCC, in the field of industry, and also he has been the joint secretary of the education department for 5 years, and he has brought about very many new projects to bring benefit to the society. And also, he is a very good poet. Most respected, Mr. Vinayak Dalveji. Mananiya Mantri Ji, hamare beech se prasthan karenge. तो दीदी से निवेदन करते हैं, उनका सम्मान करें।
थैंक यू सो मच। श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, द डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड द पद्म अवार्डीज, Sir, there are many Padma awardees sitting in the audience, Padma Shri and Padma Vibhushan. So, my salute to all of them and all the dignitaries on the dais, of the dais. Om Shanti. Well, I recollect कि कुछ साल पहले, आज मैं यहां दूसरी बार आ रहा हूं, कुछ साल पहले जब मैं इसी ऑडिटोरियम में आया था तो राजयोगिनी दादी जानकी जी ने यही शब्द कहे थे, ओम शांति, जो आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मुझे याद है, ये दूसरी बार है मैं यहां आया हूं, कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस समय मेरे क्या ध्यान में आया कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और पागलों की तरह अमेरिकन्स खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, अगर मैं कहूं तो ऐसे क्यों नहीं होता। वो उनकी जो उसके पीछे की जो शक्ति है, जो उनकी एक पावर है, वो कहती है, जो मैंने महसूस किया था जब मैंने ओम शांति जानकी दादी से सुना था। ब्रह्मा बाबा ने जो ये बहुत बड़ा सा पेड़ छोटे से बीज बो के 1936 में, तो मेरे ख्याल से हैदराबाद सिंध में बोए, उसका जितना बड़ा वटवृक्ष होते जा रहे हैं। और आज राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी वो संभाल रही है, मेरी पिछले बार उनसे भी मुलाकात हुई थी, मुझे बहुत उसके बारे में अच्छा लगता है। आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च, अ न्यू पैराडाइम जी। और वो भी उस अवसर पर जबकि हम हमारे 75 साल आजादी के पूर्ण करने जा रहे हैं, तो ये दोनों का मिलाप जो है बहुत मायने रखता है। मेरे ख्याल से ये जो स्पिरिचुअलिटी हम यहां पे देखते हैं, तो इनकी फिलॉसफी क्या है, शायद मैं गलत होगा तो मुझे माफ कर दीजिए, मगर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फिलॉसफी क्या है, तो शिव बाबा जो कि एक इवॉल्व्ड सुप्रीम अमूर्त आत्मा है, और हम सब उस तरफ जाने की कोशिश करने वाले अलग अलग स्टेजेस के आत्माएं हैं। तो मैं इस फिलॉसफी की तरफ एक जूलॉजिस्ट होने के नाते इवोल्यूशन की तरफ देखता हूं। आज हमें क्या मैसेज मिलता है इस मंच से, अगर हम इसे साइंटिफिकली जुड़ने की कोशिश करें, तो हर आत्मा अंत तक इवॉल्व होने की कोशिश करे, जो कि वो परमपिता परमात्मा से जा मिले। ये मेरा ख्याल है कि जो यहां पे हो सकता है, शायद मैं गलत हूं क्योंकि सर्मन्स तो मैंने ज्यादा अटेंड किए नहीं है। तो ये अगर हम शिव बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय किस तरह से स्पिरिचुअलिटी लाती है, तो आज भी वो मुरलियों के माध्यम से लाती है। ये मुरली क्या चीज है, तो ये मुरली शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को दी, डायरेक्टली गुलजार दादी को दी, और जो चलते आ रहे हैं उसको आधार करते हुए हम अपनी आत्मा को इवॉल्व करना चाहते हैं, शायद यही साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी इस मन से जाती होगी, ऐसे मैं सोचता हूं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस की बात करें, तो हमेशा लोग कहते हैं कि न्यूटन के सर पे एक एप्पल गिरा और उसने इमीडिएटली सोचा ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशंस। हमारे सामने होसूर सर बैठे हैं, माफ कर दीजिए, पद्मश्री होसूर इज अ साइंटिस्ट, हम ऐसा सोचते रहते हैं कि उनके ध्यान में आया, हमारे क्यों नहीं आया। ऑन अ लाइटर वेन, अगर मेरे सर पे नारियल भी गिरता तो भी मैं शायद वो नहीं सोच पाता। क्यों नहीं सोच पाता, सिंपल सी चीज है, इतने ऊंचाई से 40 फीट से अगर नारियल मेरे सर पे गिरता तो मैं अस्पताल में नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि न्यूटन को जो
इमीडिएटली महसूस हुआ कहीं ना कहीं हर साइंटिस्ट जब कुछ अलग ढंग से सोचता है तो मेरे ख्याल से उसके पीछे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी काम करती है, इसीलिए वो आउट ऑफ बॉक्स उसी तरीके को अलग ढंग से सोच पाता है, ये मेरा ख्याल है। हम अगर देखें एक एग्जांपल वो भी है जो कि यूरेका यूरेका करके जो भागे थे, वो भी क्या है, सडनली बायोन्सी आर्किमिडीज को तब बात में अगर आती है तो वो भी कहीं से एक स्पार्क आता है। स्पार्क आप लोगों ने बहुत अच्छा नाम दिया है आपके इसको भी, ये जो स्पार्क है बस वही आपको सही मामले में इंटरप्रिटेशन में ढांचे में डाल देता है, ऐसे मुझे लगता है। सर वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ केकुले बिकॉज ही इज अ केमिस्ट, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। केकुले के ड्रीम्स में सपने में एक सांप आया था जो अपनी पूंछ पकड़ के गोल गोल घूम रहा था और उसने उसी आधार पे बेंजीन रिंग ढूंढी। अभी वो सांप घूमने का और बेंजीन रिंग का क्या है, शायद कहीं यहीं से वो स्पिरिचुअलिटी साइंस के साथ जुड़ जाती है। मैं ज्यादा नहीं बात कर सकता, मुझे 5 मिनट दिए और सबसे बड़ी बात है कि अलका दीदी ने पहले ही बता दिया कि मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं, तो अभी यहीं स्टेज पे बैठ के मैं वो तो काम नहीं कर सकता। माननीय मंत्री महोदय निकल गए वरना मुझे उनको एक छोटा सा मैसेज देना था। मृत्युंजय भाई के साथ हम जब आज बात कर रहे थे, मृत्युंजय भाई इज अ मैग्नेट, वो खींच लेते हैं हमें, और वो मैग्नेट के दो छोटे छोटे हिस्से उन्होंने कल्याण में रखे, एक अलका दीदी है एक भारती दीदी है, तो वो हमें यहां तक ले आती रहती है। मृत्युंजय भाई ने आज बहुत बड़ी बात कह दी थी और वो कह रहे थे कि जो विनाश चल रहा है, जो मिनिस्टर साहब भी बोले, हर लोग बोल रहे हैं, आइंस्टाइन्स इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे थे कि विनाशकारी वृत्तियां साइंस से आती रहेगी जब तक धर्म या स्पिरिचुअलिटी उससे मैच नहीं करेगी, ज्वाइन नहीं करेगी। ये इज इक्वल टू MC स्क्वायर से तो एटम बॉम्ब बना, बराबर उसी का अच्छा भी तो तरीका हम अपना सकते हैं। The energy which is produced is equal to the mass into square of the velocity of light. इतनी बड़ी एनर्जी वो एक एटम देता है। मुझे जो मैसेज देना था आज के तारीख को वो यही आइंस्टाइन का फॉर्मूला, क्या हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं? हम उसको कहेंगे सर सॉरी एक्सक्यूज मी बट आई कॉल इट एज E³ इज इक्वल टू MC स्क्वायर द होल क्यूब। What do I mean? Einstein said, E is equal to MC square. I say, E³ is equal to MC square, the whole cube. What is this E³? For me, E³ stands for education, employability and entrepreneurship. Agar ये तीन चीजों को हमारे देश ने इकट्ठा लाया यूथ के लिए, तो जो पावर हम पैदा करेंगे पॉजिटिव पावर, E³, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगर ये साथ में लाए तो जो एनर्जी ये हिंदुस्तान का यूथ दे सकता है दैट विल बी इक्वल टू MC स्क्वायर द होल क्यूब। वेल, हम कलयुग से सतयुग जाने की बात कर रहे थे, सही है, आई एम ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक, मैं भी उस समय का इंतजार कर रहा हूं और हमें वो बताया भी गया कि बहुत जल्दी आ रहा है, होप्स दिए है तो आना ही चाहिए। दूसरा, मुझे पता नहीं मेरा किसने वो बायोडाटा बनाया और उसमें लिख दिया कि मैं कवि भी हूं, तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरा एंड कुछ कविता से करना चाहिए मेरे खुद की। मगर उसके पहले मुझे जो संजय भाई ने बताया, सतीश भाई जो गा रहे थे, क्या आपको पता है उन्होंने कल वो गाना लिखा है और आज वो संगीतबद्ध करके आपके सामने आ रहे हैं इस इवेंट के लिए। हैट्स ऑफ टू हिम। अब मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां दिग्गज साइंटिस्ट या दिग्गज कवि, और मुझे बताया गया कि मैं साइंस पे बात करूं, थोड़ी सी तो कर ली, और अब बोले कि मैं कवि हूं तो कविता भी एक बतानी चाहिए। इस राजस्थान के पावन भूमि पे खड़ा हूं, हमीर देव उनकी याद आ रही है, वो हट्टी थे, हमीर हट, और जो फिलॉसफी स्टेज से जा रही है, वो दोनों का मिलाप अगर मैं करूं तो मैं अंत में कहूंगा, सत्यम शिवम सुंदरम की घोष में तू ऐरावत पे हो सवार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सत्यम शिवम सुंदरम की घोष में तू ऐरावत पे हो सवार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तू बन जाना एक सिपी सिपी, तू बने जाना एक सिपी, जो सरपरस्त है सीपज का, वो प्रोटेक्ट करता है मोती को अंदर। तू बने जाना एक सिपी, जो सरपरस्त हो सीपज का, हृदय हो तेरा सोहाइन, सीना हो तेरा सीपर का, आज नहीं तो कल खिलेगी दुनिया में बसंत बहार। सतयुग आएगा तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, सत्यम शिवम सुंदरम की घोष में तू ऐरावत पे हो सवार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत धन्यवाद भ्राता विष्णु जी, बहुत गहरी बातें बहुत रमणीक रूप से आपने कहा। अभी 1:30 को 8:30 यहाँ बहुत सुंदर मैजिक शो भी होगा, उसके पहले भी हमें कार्यक्रम पूरा करना है, कोशिश करके बहुत जल्दी हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ, भ्राता विष्णु लांबा जी जो ट्री मैन ऑफ इंडिया है, फ्रॉम द एज ऑफ जस्ट 7 विष्णु जी स्टार्टेड प्लांटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन वेरियस प्लेसेस। People often plant on Environment Day, but the tree man of India, Vishnu Lambaji, is a person for whom every day is Environment Day. Without government support, Vishnu Lambaji has gifted 5 million trees to the country without any government support. He has planted around 26 lakh trees with public participation so far. So, most respected भ्राता विष्णु लांबा जी।
सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, भारत की आजादी की 75 वर्षों की इस वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में आज संपूर्ण भारत मना रहा है। संपूर्ण भारत अपनी आजादी की यशोगान को विभिन्न रूपों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न विभिन्न तरीकों से मना रहा है। इसी क्रम में वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित संस्था ब्रह्म कुमारी ने भी अपने अनूठे ढंग से और विभिन्न विभिन्न आयोजनों के माध्यम से विभिन्न विभिन्न लोगों, विभिन्न विचारों, विभिन्न धर्मों, समुदायों, संप्रदायों और मतों पंथों को जोड़ करके लगातार मनाने का काम जारी कर रखा है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। 5 मिनट कहा गया है, मैं थोड़ा सा अनुशासित हूं तो मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट में ही खत्म करूं। जैव विविधता और जीव विविधता के सामंजस्य को साथ लेकर चलने वाली ब्रह्म कुमारी की सोच को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना के साथ में आज के पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण संरक्षण को भी विशेष महत्व देकर के आने वाले 5 जून को 40 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आभार करता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से, यथासंभव हम बहुत जमीनी स्तर के लोग हैं, महाराष्ट्र शासन से आने वाले आदरणीय अभी विज्ञान और कई सारे विषयों को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिस भाव से, जिस आत्मीयता के साथ वो संस्कृत और अंग्रेजी और साइंस की भाषा समझा रहे थे, उस आत्मीयता ने, उस भाव ने मुझ जैसे अनाड़ी को भी समझाने की एक चेष्टा की है, वरना मुझे अंग्रेजी और साइंस नहीं आती। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि महाराष्ट्र मेरा प्रिय राज्य है और मुझे पिछली सरकार में वहां का ब्रांड एम्बेसडर रहने का मौका मिला रवीना टंडन और अमिताभ बच्चन के साथ में। सचिन तेंदुलकर ने जो स्थान छोड़ा वो मुझे मिल गया। मैं जमीन स्तर का आदमी हूं, आप तकनीकी स्तर के आदमी हैं। मैं पेड़ लगाना जानता हूं, गड्ढा खोदना जानता हूं। मुझे तो बाद में पता चला कि पेड़ वेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मुझे नहीं पता था ऑक्सीजन का। मुझे तो पता था पेड़ लगाना है, बस बात खत्म। तो मैं प्रणाम करता हूं और मैं अनुमति चाहता हूं कि आने वाली 10 से 20 मई तक वापस महाराष्ट्र में ही मजदूरी करने जा रहा हूं। मित्रों, आगामी वर्ष 2023 में जयपुर एनवायरमेंट फेस्टिवल की घोषणा भी हुई है हाल ही में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख के रूप में वैश्विक नेता महान पर्यावरणविद आदरणीय एरिक सोलिम साहब ने घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, वैश्विक स्तर के उस आयोजन में जिसमें 196 देशों के प्रतिनिधि जयपुर की धरती पर भाग लेंगे, आप में से, आपके परिचितों में से किसी को भी किसी भी रूप में, अगर यदि आप जानते हैं जो इस धरती के कल्याण के लिए, धरती के संरक्षण के लिए किसी भी तरह का इनोवेशन कर रहे हैं, मैं उन सबको उस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं, कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में जहां लोगों के पीपे में आटा खत्म हो गया, खाने को रोटी नहीं बची थी, ऐसे हालातों में एक छोटी सी बच्ची ने फोन किया कि ऐसे किसी की शादी है और एक प्रेरणा मिली। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, और प्रेरणा मिली तो हम लोगों ने घर से निकले, इसी दिवाली पर 2 महीने लगभग काम हुआ। हमने कहा कचरा दो पौधा लो, हमारी देसी सोच से कार्यक्रम बना। लगभग 5,000 घरों से हम लोग कचरा माने उनका उतरा हुआ, पहना हुआ जूता, चप्पल, कपड़ा जो कुछ था सब लेके आए। 4 कार्यकर्ताओं को शामिल किया कि किसी को अपमानित महसूस ना हो, उनको साफ करवा करके और देने का काम हुआ। 5,000 परिवारों को कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में जरूरत की सामग्री मिल गई आसानी से। हमने नाम दिया कचरा दो पौधा लो, और माननीय एरिक सोलिम साहब, हमारे आदरणीय नेता, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख, उन्होंने उसे नाम दिया जयपुर शेयरिंग फेस्टिवल, आदान प्रदान का कार्यक्रम। हम इस कार्यक्रम को रेगुलर रखना चाहते हैं। जहां भी, यदि आप जयपुर के आसपास के हैं तो प्लीज ध्यान दें, आपके घर में जो भी कचरा हो, जूते, चप्पल, कपड़े, कैसा भी कचरा हो, वो हमें दीजिए, हम आपको पौधे देंगे, आपके कचरे को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आज इन इतनी सारी विभूतियों को देख रहा हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आदरणीय बहन जी से बता रहा था उस समय, ये भारत का पहला ऐसा मंच है ब्रह्म कुमारी का आज इस पावन परिसर में, जहां मेरे जैसे सामान्य भगवान को भी खड़ा होने का मौका मिला है। या तो भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहां पर इतने सारे पद्मश्री कतार लगा के बैठे होते हैं, या फिर इस ब्रह्म कुमारी के मंच पर लोग कतार लगाकर बैठे हैं जिसमें पद्म भूषण भी है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण भी है। कहीं न कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। यीशु बहन जी बैठी हुई है, आज दिन भर में इनके प्राण पी रहा था, पूरी मस्ती कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं इनको गुस्सा दिलाऊं। अब बता रहा हूं, मैं जानबूझ के मैं बराबर कोशिश कर रहा था कि मैं इनको गुस्सा दिलाऊं। मैं सोच रहा हूं जब से आया हूं ये लोग इतने शांत कैसे रह लेते हैं। मैं वो माता जी, बहन जी बैठी थी मेरे साथ में भी थोड़ी देर पहले, जिनको आपने भेजा था, जो आपके उसकी स्पार्क की हेड है, मैं नाम भूल रहा हूं। मैंने उनको कहा कि ये कैसे संभव है, इतनी देर में तो यहां तो गोली चल जाती। मतलब मैं तो 2 साल चंबल की दस्युओं में, डकैतों में रहने का काम हुआ, उन लोगों को कैसे बंदूक रख करके और पेड़ पौधे लगाने का काम वो शुरू करें। 2 साल मुझे चंबल के डकैतों में लग गए, मैं बीएड में रहा। आपको सबको जानकर के शायद आश्चर्य ना हो, क्योंकि शायद कुछ लोग जानते होंगे, मुझे वहां पर एक चंबल के पूर्व दस्यु मिले, उनका नाम था पंचम सिंह। पहली मुलाकात जब थी, मैंने जाकर के उनसे पूछा, काफी समय हो गया उन बातों को, 2011-12 में संभवतः मैं था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जीवन आज जिनकी वजह से बदला है वो ब्रह्म कुमारी की देवियां हैं जो सफेद कपड़े पहनकर यहां पर आई थी। डाकू पंचम सिंह कोई मामूली हस्ती नहीं है, 550 डकैतों का सरदार था कोई जमाने में। और मैंने उनसे कहा कि आज मुझे एक सवाल आपसे करना है कि बहन बेटियों की जो स्थिति है। और हां, बीच में एक बात और मैं धन्यवाद दे दूं आज इस मंच को, कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मैं देश भर में जाता हूं, दुनिया भर में जाने लगा हूं, कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर अपनी बहन बेटी के साथ बैठ करके आप उन नृत्यों को नहीं देख सकते, अमर्यादित होते हैं, फूहड़ होते हैं। इस मंच पर आज दो बहनों को मैंने नृत्य करते हुए देखा, मेरी आत्मा कह रही जैसे कोई मेरी खास बहनें नृत्य कर रही हूं। ये संस्कार, ये अनुशासन संभवतः आपको जिंदा रखने में बहुत बड़ा काम कारगर साबित हो रहा है। आज इन विभूतियों को देख रहा हूं, यहां पर बड़े बड़े नाम, कई नाम मेरे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे अच्छे संबंध है, सबके नाम छूट जाएंगे, मैं लेना नहीं चाहता और आपकी मर्यादा का भंग कर रहा हूं, मैं शायद 5 मिनट ज्यादा हो गया है। ये सब लोग मिलकर के जितने भी चेहरे यहां बैठे हैं, ये जो नए भारत की बात बार बार मंचों से होती है, बार बार नए भारत की बात होती है, उस नए भारत के निर्माण की आधारशिला भी अगर कोई रखेंगे तो ये लोग रखेंगे जो ब्रह्म कुमारी के इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, पर्यावरण संरक्षण का ये कार्य जो आज विश्व की जरूरत है और विश्व इसकी तरफ चल पड़ा है, और मुझे जानकर खुशी हुई यीशु बेन जी ने बताया कि हमारे यशस्वी वन मंत्री केंद्र सरकार के आदरणीय भूपेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में सहभागी हो सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको निवेदन कर दूं कि मैं भी उनसे कल एक बार इस विषय पर बात करने वाला हूं। मेरा एक प्रार्थना और भी थी, श्री कल्पतरु संस्थान की अपनी नर्सरियां हैं, अपने प्लांट हैं, अपने कार्यकर्ता भी हैं, वो सब आप ही की इस नदी के छोटे से बूंद बिंदु हैं। ये विश्व पृथ्वी दिवस इस बार हम 50वां मना रहे हैं। इस 40 की संख्या को यदि आप 50 का विचार करें तो हम भी इसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा कुछ जो बन पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। ब्रह्म कुमारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं, ऐसा मुझे लगता है पिछले यहां 24 घंटों में जो मैं देख रहा हूं। और विशेष रूप से मैं भोजन का प्रिय हूं, तो यहां जो भोजन करवाया है आप लोगों ने उसके लिए भी विशेष आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस 75वीं आजादी की वर्षगांठ पर आप लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया और बहुत बड़ी ताकतों को बुला सकते थे, एक सामान्य बागवान को भी आपने याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो रिश्ता बना है मेरे जैसे फकीर के साथ साथ आप मुझे बर्दाश्त करते रहिएगा। माननीय मंत्री महोदय चले गए महाराष्ट्र शासन से, पहले मैं मध्य प्रदेश सरकार का ब्रांड एम्बेसडर था एक डिपार्टमेंट का, पिछली सरकार में मामा जी की सरकार थी। तो बस मेरी प्रार्थना है खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह से लगे रहिए। मुझे लगता है जिस रास्ते पर आप सब चल पड़े हैं वो रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। वैसे तो आपको सुनते रहने की इच्छा तो है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी मैं अनुरोध करती हूँ सिस्टर डॉक्टर ए वनजा जी, हु इज द सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ एडवांस्ड कॉम्पोजिट्स डिवीजन नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु। She has received NAL's Best Woman Scientist Award in the area of research for the year 2004 and 2005 and CSIR NAL Award for Excellence in Technology for the year 2016. She has provided guidance to many BE, MTech, ME, MSc and PhD students. Presently, she is CSIR NAL Coordinator for Academy of Scientific and Innovative Research. She is a member of prestigious American Chemical Society and also a life member of Indian Society for Advancement of Materials and Process Engineering. She is reviewer for many international journals in the field of polymer and composites. Most respected Dr. A. Vanaja ji.
A very special good evening to all the dignitaries on the dais and as well as in the audience. And most respectable divine souls who have assembled here. I don't want to repeat all the words what we have heard. So we all know that spirituality, it's a very interesting thing, how the research and the spirituality is connected has been discussed by many. So I would like to mention that spirituality is also a science. It's not anything separate from the science. It's a science, but it's a science of soul. So why do we pursue this spiritual science? That's the interesting thing I would like to present in front of you. The only thing is whether we take normal science or a spiritual science, there are some commonalities, like we should always be having quest. Quest for what? Quest for knowledge. Then wonder at the things. How do I wonder? See, there are many things in Mother Nature. Every ordinary things will contain extraordinary information. So we should first, we should have the quest and wonder at the things which are very ordinary. And there is a lot of secrets behind these ordinary things. And we should also have some other qualities like seeking, calmness, acceptance, and accepting everything. Like, let it be the criticism also, let it be the negativity also, let it be the positivity also. So if these things are practiced in day-to-day research also, we can be successful in any walk of life. This is my feeling. And it's like the power of discrimination, what we learn from spiritual science is going to play a major role in the research also. How it is. Like, one tool can be handled by anyone. How it can work. It can be used for a positive thing also. It can be for another destructive purpose also. The power of discrimination, what we should do with the given tool will be only acquired by this spiritual knowledge. So, I being a lead for a team in National Aerospace Laboratories on some research topic which was challenging, I faced lot of problems in pursuing this research program, and I have come up with success because of some practices, I would like to say. I just want to relate what I have learned to the whatever research I have pursued. There are so many technical details, I don't want to go into technical details. I will be just flashing what difficulties we have faced and how we have overcome, and finally what was the success in this aspect. So we had worked on a special aircraft program, our light combat aircraft LCA, which is Tejas, that is there today in Air Force of India. So these are mainly done by composite materials, polymer composites we call it. So it will have a polymer and a reinforcement called carbon fiber. So carbon fiber in combination with polymers will be used as the main body of the aircraft. So this is because of its so many advantages, because of its lightweight mainly. So due to this lightweight, we'll be having the fuel efficiency. That is why these composites have been used. So earlier we were using these materials which are imported. Suddenly we started having problems, like the material is available and it is just to process it and use it in the aircraft. But we couldn't do that because of some impositions on import. So lot of problems, and always like India being in developing stages, the foreign countries used to cheat also sometimes, you know. They never used to supply in time, and the delays in supply used to cause a lot of chemical advancement in using these materials. So we have to throw the material in spite of spending a lot of money, and we are not in a position to use it. So these are all the challenges. So we have to make our own material. So there was no technology available in India. Like, it doesn't mean that we don't have the capacity. So we were having so many sources. It is a challenge, like how do you bring all the people together and make the success. So we were having the sources for raw materials. We were having sources for manufacturing. All these things were, they are all existing parallelly. So we have to bring about. So this was a tedious effort, you know. It can't happen in a very short time, but it was a challenge. We have to stand for the requirement. So there, what we did first, me being a team lead, I started telling all my team, just think a while, plan properly, focus, and think that we will achieve, we can achieve, and we will be definitely doing it. So with me, there are members like Dr. Padmavati, Josna, and Rajendra Prakash, and other people were there along with me. So we have pursued this research. So I would like to show, these are the raw materials which were identified within our country. So they don't know that this will be used for aircraft. That's the irony, you know. So we have identified and we made some formulation. And it is not like just copying something and reverse engineering or not. It's not like so. From the fundamentals we have started, and we made some formulations and we started comparing. So this is very, very technical presentation. I don't want to go to the details of this. What I would like to say is, from all these, we have found we are very close to whatever we have done is equally performing with the imported material. These are all some details, technical. I don't want to go into the technical details. So I can show you the summary. We made almost, I can say, even better than the imported materials. And it is not just making some material, and we would also like to demonstrate in all its performance. Different parameters are there to equate in terms of performance. So the thing is, if you look at this slide, so the imported material was costing about 500 and 300 rupees per square meter to use in the aircraft. And apart from that, lot of problems, like we may not be using it within prescribed time and all. So with our research, consistent, lot of problems were there in between. See, we have overcome, and we could able to save 43% of import cost by this development. And we have control on our own process of making the aircraft. So, and another challenge is, okay, we have done in lab level. How do we scale it up? So we have done within our lab up to 10 cages, and we have encouraged all the small scale industries to do this. And 100 meters of material also made ready with our own custom design and everything. And finally, to use on an aircraft, it has to undergo certification by DGCA, Director General of Civil Aviation, which was once again a challenging thing. And we have pursued for that also. It's an ongoing process now. And meanwhile, a better version also is followed parallelly. And it is on par with any research of advanced countries like US or Germany or Japan or whatever. So with our technologies, and we are nowhere less. So what I want to tell is, for all these achievements, as I told earlier, I don't want to go to very deep into the technologies. To bring it to this level, to using aircraft, it was a very, 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 very challenging task. And it is only achievable by consistent efforts, constant focus, and a vision for our country, like what we are. Are we ready with the technologies for future aircrafts and self-sustenance on every technological aspect of the aircraft programs? So we are having so many programs, and we are successfully demonstrated, and we are confident with the right thinking direction, we will be able to achieve a great success in aviation programs of the country. I can proudly say, with the spiritual background, what we have gained through great, great organizations in India, and including Brahma Kumaris in one of the such organizations where I have interacted very recently. I'm very thankful for inviting me to share my experiences of spirituality in the field of research, science and technology. Thank you.
Thanks a lot, Dr. Vanjaji. Very beautiful experience. मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ ब्रह्मा कुमारी शिविका बहन से. शिविका बहन बचपन से ही इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले 12 साल से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं यहाँ शांतिवन में स्थित होकर के दे रहे हैं. आप एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इन बिल्डिंग द नेशन? इस टॉपिक पर बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं शिविका बहन.
ओम शांति. समय की बहुत सीमाएं हैं. इच्छा तो बहुत थी कि क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताना, सबको बहुत खुशी होती है इस चीज में, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं चाहूंगी कि बहुत कम टाइम के अंदर आपको ये बात बता सकूं. ब्रह्मा कुमारीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग द नेशन. जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे अगर आप जाओ अमेरिका में और अमेरिका में जाकर के कुछ गलत काम कर दो, जैसे वहां की सड़क के ऊपर कचरा डाल दो, तो किसका नाम खराब होगा? किसका नाम खराब होगा? आपका, आपको तो वहां कोई जानता नहीं है, नाम किसका खराब होगा? भारत का होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो उसी तरीके से अगर आपकी फैमिली की बात आए, फैमिली बहुत रिप्यूटेड फैमिली है, आप सब बहुत रिप्यूटेड फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, यहाँ आए हैं, और आपकी फैमिली का कोई बच्चा, एक बच्चा जाकर के आपकी कॉलोनी में, सोसाइटी में कुछ गलत काम करे, तो नाम किसका खराब होता है? किसका नाम खराब होता है? फैमिली का होता है ना? तो हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, है ना? तो ये एक यूनिट की बात है, पर्सनल बात है, कि हम सब इकाई है सोसाइटी के, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने स्टेट को, या फिर अपने कंट्री को, या पूरे वर्ल्ड को. तो उसी तरीके से ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा, उनका ये विजन था कि हमें एक नई दुनिया बनानी है. जब उनको इंस्पिरेशंस मिले परमात्मा से कि नई सृष्टि की रचना का कार्य तुम्हें करना है, इन 1936, तो उन्होंने दो चीजों को सबसे पहले प्राथमिकता दी. वो दो चीजें थी कि नई सृष्टि जब रचनी है तो सबसे पहले मुझे यंग माइंड्स, बच्चे, यूथ, उनको सबसे पहले पकड़ना है, उनको उनके अंदर परिवर्तन लेके आना है. और दूसरा उन्होंने कहा कि विश्व परिवर्तन का कार्य नारी शक्ति द्वारा होगा, क्योंकि शिव की ने भी जब असुरों का संहार करना था तो नारी शक्ति को सबसे पहले है ना सारी शक्तियां उसको दी। तो उसी तरीके से ब्रह्मा बाबा ने कहा एक तो यूथ यंग माइंड्स बच्चे और दूसरा नारी शक्ति। तो इसलिए जब ये ग्रुप बना 1936-37 में तो 300-400 माताएं बहनें और उनके बच्चे सब यहाँ आ गए और बाबा ने एक गर्ल्स हॉस्टल खोला और वहां उनकी एजुकेशन शुरू हुई। हम बहुत बार अपनी दादी गुलजार से जब बात करते थे तो दादी बताते थे, दादी गुलजार हमारे फॉर्मर चीफ रहे हैं इस संस्था के, तो दादी कहते थे दादी 8 साल के थे जब यहाँ आए थे, 8 years। कैन यू इमेजिन अ चाइल्ड विच इज जस्ट 8 years और उसको बाबा कह रहे हैं कि आपको दुनिया को बदलना है। तो दादी कहते थे दुनिया होती कैसी है, दुनिया का नक्शा कैसा था हमें वो भी नहीं पता था, और ये सोच करके ये मान करके हम आगे चले कि हाँ हम दुनिया को बदलेंगे। फिर वही ग्रुप ग्रो करके करके आज हमारी जो इस संस्था की दादियां जो हम देखते हैं, बाबा ने सबको विश्व के कोने कोने में भेज दिया कि योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज एवरी वन अफेक्ट ईच एंड एवरी सोल इन द वर्ल्ड। सारे विश्व की आत्माओं को आपको परिवर्तित करना है, पर परिवर्तन कैसे करना है तो बाबा ने उसका भी तरीका बताया। बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तन स्वयं परिवर्तन से होगा, क्योंकि आप किसी को बदल ही नहीं सकते। हम बदल सकते हैं, किसी को बदल सकते हैं, किसी को बदलने के लिए जाओ तो क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना एक उंगली दूसरे की तरफ करो तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ है। तो बाबा ने कहा पहले खुद को बदलना है, इसीलिए यू चेंज द वर्ल्ड विल चेंज, आप बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। तो बाबा ने इसीलिए इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस कराया कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या सोचते हो, कैसे चलते हो, उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे व्यवहार करते हो, तो हर चीज में परिवर्तन, हर चीज में एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बाबा ने हमारी बनाई और उसके माध्यम से सारे विश्व में आज सेवाएं चल रही है। जिस ब्रह्मा कुमारी संस्था को आप देख रहे हैं विश्वव्याप्त संस्था है, 140 देशों में ये कार्यरत है, 140 देशों में बहनों द्वारा ये परिवर्तन चल रहा है, हो रहा है। इसके अलावा जो रिसेंटली जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे कहा था कि आप जरूर बताना, आजादी का अमृत महोत्सव, तो सच्ची आजादी जैसे भारत जो है 75 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस के, उसी के साथ साथ हमने भी मोदी गवर्नमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया और जो बाबा का विजन था कि स्वर्णिम भारत को हम लेके आएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व को फिर से गोल्डन एज लेकर के आएंगे, तो उसके साथ कंबाइन किया हमने, कहा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, कि अब हमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हर विंग के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसमें हमारा स्पार्क विंग भी है। जनवरी में जब इसका उद्घाटन हमने किया तो तब से 3 महीनों के अंतराल में 10,000 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे विश्वभर में, पूरे भारत में हमने चलाए हैं। हर एक तरीके से कैंपेन्स, रैलीज हर तरीके से चल रहे हैं और हर समय, हर घड़ी हर मनुष्य को ये जरूर याद दिलाया जाता है कि आत्मा की आजादी की यहाँ बात है, स्थूल आजादी स्वयं हमें प्राप्त हो जाती है। मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगी, लेकिन हमें इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत के परिवर्तन में, हमारे विश्व में के परिवर्तन में, वो बेहद है। हमने अपनी दादियों को देखा है, सारा जीवन वो त्याग और तपस्या से उन्होंने हर एक को जैसे कि उसकी मॉडलिंग की है, हर व्यक्ति को बदला है। तो आप भी जब आप यहाँ आए हैं तो ये जरूर सीख के जाएं कि ये कौन सा लाइफस्टाइल है, ये स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में हम जो उतारे उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। और एक चीज और कि जब साइंस की बात आती है, रिसर्च की बात आती है, क्योंकि साइंस इज बेस्ड ऑन रिसर्च एक्सपेरिमेंट, तो हम भी जब आए तो हमने एक चीज को जरूर समझा कि साइंस में सबसे पहले थ्योरम्स होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम कोई चीज प्रूव करते हैं। अगर हमने एक्स इक्वल टू वाई को प्रूव करना है कि दोनों समान हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई कर देते हैं, कह देते हैं कि हाँ चलो मान लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई है। यहां पर आकर के भी यहां की स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ आपको मिल रहा है यहां से उसको आने दो, उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाओ। एक महीना कम से कम इस प्रैक्टिस को करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप अपने आप अनुभव करोगे जो यहां सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसे बिना किसी फिल्टर्स के एक्सेप्ट करो। ये हमने भी किया और हमने अनुभव करके पाया कि यहाँ एक एक चीज अनुभव के आधार पर बताई जाती है, कोई भी सुपरफिशियल नॉलेज आपको नहीं दी जाती है। तो ये चीज आप सीखिएगा और अनुभव करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शिविका बहन, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्टिविटीज के बारे में आपने अवगत कराया। ब्रह्म कुमारीज के साथ साथ एक और सिस्टर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हमारे 20 विंग्स हैं, जैसे एजुकेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, मेडिकल विंग, मीडिया विंग, कल्चरल आर्टिस्ट विंग, एग्रीकल्चर विंग, तो ऐसे अलग अलग विंग्स है हमारा टू कैटर टू द सोसाइटी, टू दैट प्रोफेशन ऑफ द सोसाइटी। कि एजुकेशनिस्ट साथ में आते हैं तो फिर एजुकेशन के फील्ड में हम कैसे वैल्यूज को ला सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में हम स्पिरिचुअलिटी को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ऐसे ही हमारा एग्रीकल्चर विंग है जिसमें योगिक खेती एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट हम लॉन्च करके कर रहे हैं, कैसे हम मेडिटेशन से हम कम केमिकल मैन्योर हम यूज कर सकते हैं, कैसे क्रॉप क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकली हम कुछ साल से ये विंग जो है वो कार्य कर रहा है। मेडिकल विंग भी कैसे मेडिटेशन के आधार से बहुत सारे हमारे डिसीजेस है उसको हम कम कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और एक प्रोजेक्ट है कैड, जो यहाँ हार्ट पेशेंट्स आते हैं और मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा ब्लॉकेजेस जो है हार्ट में वो भी खोल सकते हैं, वो प्रैक्टिकल वो करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हुए उस प्रोफेशन को बेहतर हम कैसे बना सकते हैं हम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल से। जैसे गांव गांव में भी जाकर के हम संदेश देते हैं, व्यसन मुक्ति का संदेश देते हैं, जीवन को कैसे बेहतर बनाए उसका संदेश देते हैं, और गांव में जो भाई बहने हैं उनका भी जीवन बेहतर बनाते हैं, और शहरों में एजुकेटेड जो भाई बहने हैं उन तक भी हम पहुंचते हैं, और इंटरनेशनल लेवल जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है। तो हर लेवल में ब्रह्म कुमारीज बहुत मेहनत कर रहे हैं इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए, हर व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करे। जो तनावग्रस्त लोग हैं तो उसको कैसे हम तनाव से मुक्त होकर के बेहतर इंसान बन सके उसका संदेश, न केवल संदेश देते हैं लेकिन उनके लिए सहयोग भी हम देते रहे हैं 1936 से लेकर के। लगातार ये संस्था इस दिशा की ओर कार्यरत है। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ ब्रह्म कुमार संजय भाई, जो स्पार्क विंग के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर है, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है और प्रोग्राम ब्रीफिंग बहुत संक्षिप्त रूप से हमारे बीच में रखेंगे आदरणीय
संजय भाई,
ओम शांति। काफी विलंब हो चुका है इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम इस कॉन्फ्रेंस से संबंधित कुछ सूचनाएं आपको देना चाहेंगे। आप लोग अगले और दो दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं और दो दिनों में क्या क्या कार्यक्रम चलने वाले हैं, मैं समझता हूँ आपको जो बुकलेट दी गई है उसमें आप सबने पढ़ा होगा, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। संक्षेप में हम इतना जरूर बताएंगे कि ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, खास करके हमारे विज्ञान जगत के लोगों के लिए रखी गई है और इसमें जो भी पद्म अवार्डीज हैं उनके सम्मान के निमित्त ये रखा गया है। आप सब यहाँ आए हैं, एक बहुत सुंदर स्थान, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत, यहाँ के वातावरण में थोड़े समय बैठने से भी आत्मा को बहुत बल मिलता है और यदि थोड़ा सा आध्यात्मिक पुरुषार्थ हम करें तो फिर तो बहुत अधिक प्राप्ति होती है, हम बहुत सारे मानसिक रोगों से छूट जाते हैं। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि आप आगे के जो भी सत्र हैं उसको आप जरूर अटेंड करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, आप उन्हें यहाँ से जरूर साथ लेकर के जाएं। आज इस सम्मेलन के स्वागत सत्र भी हम हैं, कल सारा दिन कार्यक्रम चलेगा, 10 बजे से 1 बजे तक इस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र रहेगा, फिर शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक एक प्लेनरी सेशन रहेगा जिसका विषय है अशरिंग इन द गोल्डन एज ऑफ रिसर्च एंड इनसाइट्स। उसके बाद शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक हमारा मेन कार्यक्रम रहेगा फेलिसिटेशन का। इस ईश्वरीय दरबार में बहुत सारे ऐसे परमात्मा शिव बाबा के बच्चे आए हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजा गया है। हम सबके दिल की ये इच्छा है कि हम उनका सम्मान परमात्मा के घर में करें। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ब्रह्म कुमारीज भी उसके साथ मिलकर के अनेकानेक कार्यक्रम कर रही है। स्पार्क विंग की ओर से हमने भी ये कार्यक्रम बनाया कि राष्ट्र के निर्माण में जिन लोगों का योगदान है हम परमात्मा के घर में बुलाकर उनका सम्मान करें। तो 6 से 7:30 बजे तक आप महानुभावों का सम्मान समारोह रहेगा, उसके बाद रात्रि 8:30 से 10 बजे तक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। खास हमारे जो आजादी के परवाने हैं, इसका नाम ही है ट्रिब्यूट टू आजादी के परवाने, जिनकी बदौलत आज हम इस स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं, हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, उनके निमित्त एक बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। उसके अगले दिन 9 तारीख को सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक इसका समापन सत्र होगा जिसका विषय सिंक्रोनाइजिंग स्पिरिचुअलिटी एंड रिसर्च ए होलिस्टिक अप्रोच। तो इस तरह से दो दिनों का ये शेड्यूल आपका रहेगा। आप सबको बुकलेट मिली होगी, आपने पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो जरूर विस्तार पूर्वक उसमें पढ़ लें और जिन्हें वो बुकलेट न मिली हो कॉन्फ्रेंस ऑफिस से जरूर उसे प्राप्त कर लें। बीच बीच में मेडिटेशन सेशंस होंगे, हमारे यहाँ योग सिखाया जाता है, सामूहिक योग समय प्रति समय सारे दिन की दिनचर्या में हम लोग करते हैं, आप सब उसमें जरूर सम्मिलित होंगे और योग क्या है, उसका सुख क्या है, जरूर उसको भी अनुभव करके जाएंगे। खास करके सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, बहुत दिव्य और अलौकिक रहता है। जो भी भाई बहन यहाँ आते हैं या रहते हैं, वो सब संगठित रूप में योग करते हैं। अगले 3 दिनों में योग क्या है, कैसे करना है, ये भी आप जरूर सीखेंगे। तो सीख करके और अभी शुरुआती दौर में भी आप जितना जानते हैं उस अनुसार आप जरूर इसमें सम्मिलित हों। बगल में हमारे राइट साइड में कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां पर ये सुबह का प्रातः योग चलेगा 4 बजे से 4:45 बजे तक, उसमें भी आप जरूर सम्मिलित हों। हर रोज 7 बजे से 8:30 बजे तक मेडिटेशन क्लासेस होंगे, जिसे हम राजयोग शिविर कहते हैं, जिसके माध्यम से आपको राजयोग की एक गहरी जानकारी प्राप्त होगी। तो आप सब उसे भी जरूर करें। तो इस तरह से ये एक संक्षिप्त दिनचर्या थी। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। आपके भोजन की जो व्यवस्था है हमारे बड़े डाइनिंग हॉल में रहेगा। जो भी बीके भाई बहन हैं उनके भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा, और जो मेहमान हैं सेकंड फ्लोर पर भोजन करेंगे। तो गाइड भाई बहने विशेष ध्यान रखें, जो भी मेहमान हैं उनको सेकंड फ्लोर पर लेकर के जाएं। बाकी सारा डिटेल आपकी बुकलेट में है। एक चीज आप सब ये भी जरूर ध्यान रखें कि इस प्रवास के दौरान आप बैज जो आपको मिला है उसको लगा करके रखें, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो उनमें और आप में भेद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो बीच बीच में कोई आपको पूछे ना कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो आप बैज जरूर पहन करके रखें। और किसी भी तरह की कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो कॉन्फ्रेंस ऑफिस, जो कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे है, वहां से आप ले सकते हैं। और खास अनुरोध रहेगा कि आप एक बहुत ही सात्विक स्थान पर आए हैं, ये एक आश्रम है, तो 2 बातों का विशेष जरूर सभी ध्यान रखेंगे। वैसे तो कहने की बात नहीं है, क्योंकि हम सब बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, और हम जानते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थान पर जब हम जाते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो किसी भी तरह का हम नशा न करें, किसी भी तरह का स्मोकिंग या ड्रिंकिंग यहाँ से, इस प्रकार यहाँ के इस तरह के कार्यों से यहाँ की सात्विकता प्रभावित होती है। तो आप सबसे अनुरोध रहेगा कि किसी भी प्रकार का व्यसन कैंपस के अंदर न करें। दूसरी बात कि यहाँ की अपनी एक मर्यादा है, जब भी आप अपने कमरों से बाहर निकलें पूरी तरह से आप वस्त्र पहन करके निकलें। कई बार देखने में आता है सुबह हम आधे अधूरे कपड़ों में या नाइट ड्रेस में ही हम वॉकिंग पे निकल जाते हैं, चाय पीने आते हैं। तो वस्त्रों की भी अपनी एक यहाँ की मर्यादा है, तो जब भी आप कमरे से बाहर निकले कृपया पूरे कपड़े पहन करके ही आप बाहर निकले। और अगर किसी को वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट आदि की फैसिलिटी चाहिए हो तो करीब 24 घंटे पहले जरूर हमारे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट को सूचित करें। आपको जो फाइल दी गई है उसमें एक फीडबैक फॉर्म भी होगा, जाने से पहले आप उसे जरूर भर करके कॉन्फ्रेंस ऑफिस में जमा करें। तो इस तरह से कुछ सूचनाएं थी जो आप सब जरूर ध्यान पर रखेंगे, और भी आवश्यक सूचनाएं बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी। तो आप जब तक हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रहें, अपना घर समझ करके रहें, कंफर्टेबली रहें, और जो भी ज्ञान योग यहाँ मिल रहा है उससे अपने जीवन को सजाते हुए अपने आगे की यात्रा को बहुत सुखद बनाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। अभी मैं अंबिका दीदी से निवेदन करती हूँ, मंचासीन अपने मेहमानों का सम्मान शॉल देकर के, मुझ शॉल और मोमेंटो देकर के सम्मान करें।
कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स हैं। इसी डायमंड हॉल में बहनों के तरफ गेट नंबर 8 पर स्पार्क विंग के द्वारा रिसर्च एवं संकलन की गई विशिष्ट पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है। इच्छुक भाई बहने स्टॉल से मन चाहे पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। और मेहमान जो यहाँ आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, आप सभी के लिए कल सवेरे का जो राजयोग शिविर का सत्र है 6:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा। नोट करें 6:30 बजे कल सवेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में आप सभी के लिए राजयोग का सेशन रहेगा कॉन्फ्रेंस हॉल में 6:30 बजे। फिर उसके बाद सेशन पूरा होने के बाद 8 बजे आप सभी को ईश्वरीय सौगात वहां प्राप्त होगा। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ, शशि बहन जी अभी योग में बैठते हैं, लाल लाइट में बैठेंगे। और शशि बहन जी जो सतना सेंटर के इंचार्ज है और भोपाल जोन के स्पार्क विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर है, आपसे निवेदन करती हूँ कमेंट्री के साथ हमको योग कराएं और लाल लाइट करें।
ओम शांति। कहते हैं खुद से मिले बिना खुदा मिल नहीं सकता, तो चलिए हम सभी अंतर जगत की यात्रा करेंगे, आज स्वयं से मिलेंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं की स्वयं से मुलाकात कर ली। तो आप सभी तैयार हैं अपने आप से मुलाकात करने के लिए। समय की अपनी सीमा है, आप लोगों को मेडिटेशन बीच बीच में मिलता रहेगा। सुबह का सत्र 6:30 वाला जरूर अटेंड करें, उसमें आपको अपनी पहचान मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ हम अंतर जगत की यात्रा पर चलते हैं। ओम शांति। इस पंच तत्व के शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। इस रंगमंच पर अभिनय करने के लिए मैंने इस भौतिक शरीर का आवरण किया है। मेरे परम पिता परमात्मा 5 तत्व की दुनिया के पार, चांद सितारों के भी पार, परम धाम में निवास करते हैं। वास्तव में मैं आत्मा भी वहीं की मूल निवासी हूं। मुझे आत्मा का स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप है। और मुझ आत्मा के पिता जो परमात्मा है वो भी निराकार ज्योति स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर और सर्व शक्तियों के और सर्व गुणों के भंडार हैं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा
इस पंच तत्व के शरीर से, भक्ति के मध्य से निकलकर पंच तत्व की दुनिया को पार करते हुए अपने पिता से मिलन मनाने के लिए और अपने आप को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर करने के लिए उनके निकट जा रही हूँ। मेरी यात्रा परम धाम में जाकर मेरे पिता परमात्मा के अति निकट पहुंच गई, अनुभव करें कि मैं आत्मा ज्योति, परमात्मा ज्योति के अति निकट विराजमान हूं। परमात्मा से शांति की, प्रेम की, आनंद की, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की किरणें निकल कर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। कितना मनोहारी दृश्य है आत्मा रूपी गागर में परमात्मा सागर की शक्तियां समा रही हैं। अब मैं आत्मा अपने आप को परमात्मा शक्तियों से भरकर रंगमंच की ओर लौट रही हूँ। अनुभव करें कि आत्मा ज्योति पंच तत्व की दुनिया की ओर चल पड़ी और धीरे धीरे इस पंच तत्व के शरीर में, भक्ति के मध्य में उन्हें आकर विराजमान हो गई और परमात्मा शक्तियों से मेरा पूरा शरीर आलोकित प्रकाशित हो रहा है। धन्यवाद परमात्मा का जिसने मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर किया। ओम शांति।
शशि बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही धीरज से यहाँ बैठे 6 बजे से लेकर के यहाँ सुने और हम सभी की प्रोत्साह बढ़ाया। आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद है। आज के सत्र के सभी स्पीकर्स का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। करतल ध्वनि से हम स्पीकर्स का भी धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।